ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है और ये उन आपराधिक घटनाओं का नाट्य और काल्पनिक रूपांतरण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को अपराधी ठहराना, किसी अपराध का फैसला सुनाना या अपराध को लेकर लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन या किसी समूह के व्यक्तियों, लिंग, जाति, समाज, संप्रदाय, धर्म या क्षेत्र की निंदा या अवमानना करना नहीं है। इस कार्यक्रम में किसी भी मत, विचारधारा या बयान आदि को लेकर किसी भी तरह के विवाद या मतभेद के लिए चैनल या HT मीडिया लिमिटेड किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए दर्शकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
फीवर केस 104 जुर्म के पीछे की दास्तां।
हम पे एतबार करो, जो 100 दफा ये कहते हैं वही आस्तीनों में खंजर छिपाए रहते हैं। मैं हूं वीर राठौड़ और मैं ले चलता हूं आपको उस पुलिस स्टेशन में जहां पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि RTI एक्टिविस्ट साबिया रहमान के इस सनसनीखेज हत्याकांड का रास्ता सत्ता के इस गलियारे से ही होकर जा रहा है। पर सवाल था कि कल तक जिस स्टेट पुलिस पर सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर चलने का इल्जाम लगता रहता था, आज वही पुलिस प्रदेश की सत्ता के टॉप पर बैठे इन्हीं नेताओं से सवाल कर पाएगी? और ये शक एक तरह से सच ही साबित हुआ जब पुलिस ने साबिया से नेताओं की लगातार होने वाली बातचीत के फोन डिटेल्स मिलने के बाद भी नेताओं से नहीं, साबिया के पिता श्री मेहरबान से पूछताछ शुरू की।
आपकी पिछले कुछ दिनों में क्या राघव प्रसाद से कोई बातचीत हुई है?
हाँ, हुई तो थी। मतलब मैंने जिस दिन ये सब हुआ था उसी दिन उनको फोन किया था मैंने।
एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन?
वो सुन के एक दफा को तो वो बिल्कुल खामोश हो गए थे।
अच्छा, तो वो आपसे घर पर मिलने नहीं आए?
नहीं, मिलने तो नहीं, आए थे उसी शाम को अपने कुछ साथियों के साथ आए थे। बहुत दुखी लग रहे थे वो भी।
ठीक है, ठीक, आगे जरूरत हुई तो आपको फिर से तकलीफ दूंगा।
अभी तक हुई पुलिस इंक्वायरी में सामने आया कि साबिया के कई सीनियर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियन से गहरे संबंध थे और ये बात पुलिस के लिए एक रास्ता खोल रही थी। पर तभी विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन निलय सिंह ने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर इस केस की CBI इंक्वायरी की मांग कर दी। वैसे ही केस में राजनीतिक उलझने सुलझने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी केस और उलझ गया जब विदेश में रह रही साबिया की छोटी बहन अनीशा ने इंडिया आकर अपने शक जाहिर किए।
अनीशा जी, सभ्या की बहन होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे?
क्या आपको किसी पे शक
है? अनीशा जी, क्या पुलिस आपको न्याय दिलवा सकेगी?
मुझे तो सीनियर पुलिस ऑफिसर गगन श्रीवास्तव पर ही शक है। आई डाउट कि ये सब उन्होंने ही करवाया हो और क्या पता इसके बाद हम सब भी उनके निशाने पर हो।
इस चौतरफा दबाव के चलते आखिर पुलिस के पास कोई चारा नहीं था और उसने सत्ता दल के सांसद वरुण अजय से पूछताछ की।
सर, हमारी जानकारी के हिसाब से साबिया रहमान अभी कुछ दिन पहले ही आपके साथ विदेश यात्रा पर गई थी।
हाँ, गई थी। तो
लोगों का कहना है कि साबिया के साथ आपके गहरे संबंध थे।
ये सब खबर आपको कौन देता है? साबिया RTI एक्टिविस्ट थी इसीलिए मैं उसको जानता था। पर इसका मतलब आप कुछ भी कहेंगे? साबिया और मेरे बीच में गहरा कुछ भी नहीं था, ना दोस्ती ना दुश्मनी।
जैसी पुलिस को उम्मीद थी वैसा ही हुआ। साबिया से संबंधों के बारे में कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट सांसद अजय ध्रुवे ने भी दिया। पर इसी दौरान पुलिस इंक्वायरी में एक चौंका देने वाली बात सामने आई कि RTI के तहत साबिया ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ जानकारी मांगी थी, पर इसके बाद ही इन दोनों से उनके संबंध अचानक अच्छे हो गए थे। जैसे ही पुलिस को लगने लगा कि वो हत्याकांड की जड़ तक पहुंचने वाली है, तभी केस में कई सत्ता दल के नेताओं के नाम सामने आने से विपक्ष ने प्रदेश सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
हमारी मांग CBI।
और भारी दबाव के चलते राज्य सरकार ने 3 सितंबर 2011 को इस केस को CBI को सौंपने का फैसला कर दिया। घोषणा के तुरंत बाद सीबीआई ने श्री भटनागर के नेतृत्व में एक जांच दल बनाकर अपना काम शुरू कर दिया। साबिया की बहन अनीशा इस केस में एक अलग ही मोड़ लेकर सीबीआई के पास पहुंची।
हेलो सर, वी गॉट दिस लेटर टुडे ओनली।
पुलिस इस केस को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसमें आईपीएस गगन श्रीवास्तव खुद शामिल हैं और नरेंद्र श्रीवास्तव शुरू से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि नरेंद्र श्रीवास्तव ने सबूत मिटाने के लिए प्राइवेट कंप्यूटर एक्सपर्ट से साबिया के लैपटॉप को टैम्पर करवाया।
फिर क्या मिट्रू सर,
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
सर क्योंकि एक मिनट, ये देखिए, ये मैं आज ही लेके आया हूँ। ये साबिया का लिखा हुआ वो लेटर है जो उसने डीजी मध्य प्रदेश को लिखा था। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आईपीएस गगन श्रीवास्तव उसे धमका रहे हैं और शायद इसीलिए उसकी जान की रक्षा की जानी चाहिए।
इससे तो यही लगता है कि ये गुमनाम खत भी सही है, पर अगर वो खत सही है तो इस खत को लिखने वाला गुमनाम क्यों है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है?
क्वाइट पॉसिबल।
नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल।
मिस अनीशा, ये पॉसिबल है या नहीं ये हम पता लगाएंगे, पर फिलहाल यू मे गो।
और हाँ अनीशा जी, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे।
ओके सर, बाय।
सर, 2005 में गगन श्रीवास्तव पुलिस के अधीक्षक थे और तब साबिया ने कई बार हायर ऑफिशियल से उनकी कंप्लेन भी की थी।
और इसी बात का फायदा उठा के कोई जानबूझ के केस उलझा रहा है?
पॉसिबल सर, क्वाइट पॉसिबल। मेरे ख्याल से हमारे काम करने का ये एंगल ज्यादा सही है। और सर, ऐसा लगता है कि वो साबिया के काफी करीब था और इसीलिए वो इन बातों को बेखूबी जानता था।
100%। और अब जब उसे लग रहा है सीबीआई कभी भी उस तक पहुंच सकती है तो वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी छटपटाहट है, इसलिए यही उससे पकड़ने का सही समय है। गो एंड फाइंड हिम आउट। पता करो कि और कौन है जो साबिया के बहुत करीब था एंड हु इज स्टिल आउट ऑफ आवर रडार।
सो सीबीआई के सामने पहेली थी कि साबिया ने पर्यटन विकास निगम में आरटीआई की 3 एप्लीकेशंस दी थी और कमाल की बात तो ये थी कि साबिया ने ही खुद कुछ ही दिनों में ये 3 एप्लीकेशंस विथड्रॉ भी करवा ली। तो क्या ये एप्लीकेशंस वापस लेने के लिए साबिया पर किसी तरह का कोई दबाव था? पर सीबीआई की क्राइम ब्रांच की गाड़ी भी इसके आगे नहीं बढ़ी और सुराग देने वाले को 10,00,000 इनाम घोषित किया गया। तब 17 फरवरी 2012 को आयुषी तलवार हत्याकांड के जांच अधिकारी केएल नेगी को इस केस का जांच अधिकारी बनाकर भेजा गया।
It's an honor to work with you, sir. सर, हमने क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया, कॉल डिटेल्स निकाले, लोगों के स्टेटमेंट लिए, यहां तक कि लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भी हमने चेक की,
पर कुछ नहीं हुआ ना। ये कह रहे हो? अरे हाथी को सूंड से नहीं पकड़ सकते तो पूंछ से पकड़ो, पूंछ से।
आई डिडंट गेट यू सर।
देखो, दिमाग जो है वो स्क्रैच कार्ड नहीं है कि खुजाने से लॉटरी लग जाएगी, दिमाग लगाना पड़ता है। अब तक जो कुछ किया है तुमने वो सब भूल जाओ।
यू मीन?
यस, आई मीन व्हाट आई से, जो कुछ तुमने अब तक किया है जस्ट फॉरगेट इट। और उन शूटर्स का पता लगाओ जो सुपारी लेते हैं और जिनका भोपाल में अक्सर आना जाना लगा रहता है। गेटिंग मी? गो डू इट फास्ट, इससे पहले कि वो हमारे हाथ से निकल जाए उनको पकड़ो।
सर, अब उसका बच पाना मुश्किल है।
गो मूव।
अभी सीबीआई ने इस नई दिशा में काम शुरू ही किया था कि तभी जैसे उसके हाथ लॉटरी लगी। अचानक मध्य प्रदेश से सैकड़ों किलोमीटर दूर कानपुर में इस गुनाह का एक पन्ना खुला। आखिर वो गुनाह का पन्ना कौन सा था? वो कौन सा सूत्र था जो भोपाल से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद था? तो क्या साबिया के कातिल कानपुर से आए थे या ये अभी एक बार फिर से सीबीआई को गुमराह करने की कोई चाल थी? आखिर साबिया के शातिर कातिल अभी तक सीबीआई जैसी संस्था की नजरों से दूर कैसे थे? देश को दहला देने वाले इस हाई प्रोफाइल मर्डर की दास्तान का शेष भाग हम लेकर आएंगे कल इसी समय सिर्फ फीवर 104 FM पर। आप सुनते रहिए केस 104। और हाँ, सजग रहिए, क्योंकि अगर मैं और आप बदल गए तो सिस्टम के तो बाप को भी बदलना होगा।
फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तान।